Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444. 2371-7117 and 2371-7106. And do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum aarthik, vyaparik aur share bazaar ki khabron par charcha karenge aur saath hi aapke prashnon ke uttar bhi aap tak pahunchayenge. Sawal poochne ke liye aap hame in numbron par call kar sakte hain. ये नंबर है 2331-4444, 2371-7117 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 डायल करना ना भूलें। आपकी जिज्ञासा से भरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी, आपका करजोड़ अभिनंदन.
नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा दिल से इस फेस्टिवल भरे माहौल में अभिनंदन.
शरद जी, चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
We begin with the headlines. GST 2.0 reforms have given major boost to country's economy, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Adds sales jump across electronics, automobiles and consumer goods sectors. Benchmark domestic equity indices gain for the third consecutive week. Rise of 1.5% this week and global crude oil prices register a weekly loss of over 2%.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में उछाल आया है. प्रमुख घरेलू सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह वृद्धि, इस सप्ताह 1.5% से अधिक का उछाल और कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक आधार पर 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.
The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And we begin with the first story. The Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the GST 2.0 reforms have given a major boost to country's economy, leading to record sales across key sectors such as electronics, automobiles and consumer goods during the festival season. She was addressing the joint press conference on the GST Bachat Utsav in New Delhi today, along with Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The finance minister said GST rate cut benefits are reaching the common man.
The prices are reduced, meaning the tax benefit is reaching the end consumer. 54 items. I'm not going to read each one of them out. And even as we say 54 items, you know, from 12 to 5, the rate reduction has happened. And from 28 to 18, rate reduction has happened on largely most of the goods. But in some cases, one or two went this way or that way. But 54 such daily use items, we've been closely monitoring.
Speaking on this occasion, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said a record sale has been witnessed in this year's Navratri festival. He said there has been a 25% increase in the sale of electronics in this year's Navratri season in comparison to sales recorded in the previous Navratri festival.
Natural way mein consumption har saal badhta hai as income grows, as country grows. Because of the GST reforms, consumption will be significantly increasing and quite likely, it's very likely that the consumption will increase more than 10% this year विच मीन्स करीब 20 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कंजम्पशन होने की पूरी संभावना है।
निश्चित, दिल्ली से हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
जी, सभी मार्केट मिनिस्टर टीम को मेरा नमस्कार। और मेरा सवाल एक्सपर्ट से ये था आज की ये जो अमेरिका में टैरिफ वार को लेके उथल पुथल मचा रखी है, तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होने वाला है? क्या ये फिर से हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ टैरिफ वार की तरफ होगा? क्या यूएस को ये समझ में आ रहा है कि ये टेंट्रम्स उनके ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे? और आगे आने वाले भविष्य में क्या देखते हैं एक्सपर्ट कि ये फिर से हम टैरिफ वार का नॉर्मलाइजेशन होगा क्या?
नमस्कार आशीष, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये तो राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ पर जो इस समय हैं वो जानते हैं कि उनका उनका मूड कैसा रहता है और किस वजह से उन्होंने उन्होंने उसको लगाया है। वो मागा लेकर आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की एक मुहिम लेकर आए थे और वो चाहते थे कि अमेरिका में सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लौट आएँ, जबकि अमेरिका इस चीज़ को बहुत पीछे बहुत 3-4 दशक पहले छोड़ चुका है। अमेरिका इस समय अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, कुछ ब्रांड्स के लिए जाना जाता है, पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतना नहीं जाना जाता। वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से वापस आ जाए वहाँ पर। तो अब कब नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं तो थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कभी कभी कहता हूँ, मैंने एक TMI बनाई हुई है, ट्रंप मूड इंडेक्स बोलता हूँ मैं उसको। तो अब उनका मूड जब ठीक होगा, जब उनको लगेगा कि भाई ये मुहिम उनकी नहीं चल रही, पर मुझे लग रहा है ये तो हल्की फुल्की बात रही, अगर हम सीरियस नोट पर इसको बोले, मुझे लगता है जब अर्थव्यवस्था पर अमेरिका की असर दिखने लग जाएगा और उनका ये मूव, अंग्रेजी में शब्द था बैकफायर, जब ये बैकफायर करने लग जाएगा, महंगाई बढ़ने लग जाएगी। आप देख रहे हैं डॉलर कमजोर हो रहा है, शायद हम बहुत कम श्रोता जानते हो कि भारतीय रुपए के खिलाफ भले ही डॉलर मजबूत हुआ है, परंतु आप ब्रिटिश पाउंड लें, स्विस फ्रैंक लें, आप जापानीज येन लें और यूरो लें, ये चार मुख्य करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर इंडेक्स होता है जिसमें बास्केट ऑफ 6 करेंसीज लेते हैं, वो 110-111 हुआ करता था, इस समय वो 97-98 के आसपास घूम रहा है। 10% 50 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई है। तो मुझे लगता है आशीष के जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था पे ये जो उनके आर्थिक पैमाने हैं ये स्वयं उनको कहने लग जाएंगे कि देखिए आपको अब अपना शायद मुंह भी वापस लेना चाहिए या ये करना चाहिए, और महंगाई वहां पर बढ़ने लग जाएगी। तो जब ऐसा कुछ होगा, हो सकता है इस समय ऐसे समय में उनको संदेश मिले, उनको लगे कि अब इसको ठीक कर देना चाहिए। बाकी आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ।
नेक्स्ट कॉलर इज मुर्तजा फ्रॉम मुंबई। मुर्तजा, हाँ सवाल पूछें। हाँ सवाल पूछें।
मेरा सवाल है कि कभी उचित समय होगा कि चांदी हम खरीद सके?
कब उचित समय है जब हम चांदी खरीद सके? देखिए मुर्तजा जी, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यानी निवेश की दुनिया में कहावत होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भी सही समय होता है। अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो कोई भी समय, जब मैं लंबे वक्त से मेरा मतलब है 3-5 साल 10 साल आप रखते हैं तो आप कभी भी ले सकते हैं। पर चांदी में, क्योंकि चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी है, आपके मोबाइल फोन्स में, सोलर बैटरीज में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, और चांदी भी सोने की तरह लिमिटेड सप्लाई है, तो आपने चांदी पे सट्टेबाजी भी बहुत होती है, स्पेकुलेशन भी बहुत करी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लंबे वक्त के लिए चांदी लेना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा आप लें, परंतु जब जब करेक्शन आए, अब देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले जब कहा कि हम चीन पे जो उन्होंने 100% टैरिफ लगाया, तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो हम उस मुझे नहीं लगता वो सस्टेनेबल है ऐसी उन्होंने, तो उसके बाद सोने और चांदी के दाम में हमें कुछ 5% तक की गिरावट नजर आई। तो ऐसी जब करेक्शंस आती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए मुर्तजा जी, और इसको स्पेस आउट करके लीजिए, करेक्शंस को ऑब्जर्व करते रहिए, और ETFs के फॉर्म में लीजिए। चांदी को तो वैसे ही आप फिजिकल फॉर्म में लेंगे ज्यादा तो आपको उठाने में दिक्कत होगी, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए किलो के हिसाब से, तो आप 10 किलो लेंगे तो आप कहाँ उसको उठाए घूमेंगे। अगर आप बड़ा अमाउंट लगाना चाहते हैं तो ETFs के जरिए लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, करेक्शंस के दौरान लीजिए, और लंबे वक्त के लिए आप ले सकते हैं।
दिल्ली से निश्चित हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित जी, अपना सवाल पूछिए।
हेलो
जी अमित जी, अपने
लाइन पे हूँ मैम।
हाँ सवाल पूछे अपना।
हाँ नमस्कार सर, सर नमस्कार सर।
नमस्कार अमित, बताइए
सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, दो सवाल है मेरे सर। पहला तो ये है कि जो ETF के बारे में, अभी गोल्ड ETF के बारे में आपने बताया सर, तो गोल्ड ETF अगर हम बाई करते चले जाएं तो बाद में इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे हम बेच नहीं पाए, ऐसा तो कुछ नहीं है सर? और दूसरा सर, हेलो सर
जी,
दूसरा प्रश्न ये है कि सर ये जो 52 वीक हाई पे अगर कोई स्टॉक आ जाता है, लाइक मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है, मैंने ले रखे 100 रुपए मान लीजिए और वो हो गया 110 रुपए, 52 वीक हाई हो गया, ठीक है सर, और एक वही शेयर है जो 52 वीक लो पे हो गया, 90 रुपए का हो गया मान लीजिए, तो सर 90 रुपए में खरीदते हैं ना, तो मैंने ये देखा है सर कि 52 वीक तो वैल्यू हिसाब से बाइंग सही बन रही है, वैल्यू बाइंग अच्छी बन रही है, बट सर वो बाय करो तो वो चल ही नहीं पाती, महीनों को महीना उसी रेट के हिसाब से लटकती रहती है, उसके नीचे और आ जाती है, एवरेज करने से भी डर लगता है कि 52 वीक लो पे है, बाय करे तो कहाँ करे, समझ नहीं आता सर, धन्यवाद।
बहुत अच्छे सवाल है अमित दोनों। देखिए गोल्ड का आपने लिक्विडिटी का पूछा, तो गोल्ड के चढ़ने की एक मुख्य वजह प्राची और निशित को मैं बताना चाहूंगा वो यही है कि वो इतना ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि जब यूएस डॉलर की अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अगर यूएस डॉलर नीचे जाना शुरू होता है तो उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा वैल्यू का मापदंड नहीं है जिसके माध्यम से दो देश, दो कंपनीज, दो लोग आपस में ट्रेड कर सके, आप समझ रहे हैं, तो उसमें गोल्ड को एक बड़ा ऑल्टरनेट माना जा रहा है, और इसीलिए माना जा रहा है, हमें यहीं पर जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत आसानी से दुनिया में इसको कहीं भी आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो गोल्ड की लिक्विडिटी की बिल्कुल भी, अगर गोल्ड की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती या आने वाली होती तो गोल्ड आपको इस तरह बेतहाशा बढ़ता नहीं दिखता। आपका दूसरा सवाल है 52, देखिए 52 वीक हाई हम लोग इसको टेक्निकल्स कहते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें हम कैंडल्स होती हैं, उसमें चार्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग डिजाइंस बनते हैं, उसमें हम मूविंग एवरेजेस लेते हैं, 20 डेमा 50 डेमा 100 डेमा, बहुत सारी चीजें होती हैं टेक्निकल्स में, उसी में एक 52 वीक हाई, तो 52 वीक हाई और लो अपने आप में कोई डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया नहीं है। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, कभी कभी 52 वीक हाई पे भी और ऊपर चला जाता है, और कभी कभी 52 वीक लो पे आने पे और नीचे भी चला जाता है, जरूरी नहीं कि यहाँ, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा अमित, क्योंकि आप टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप टेक्निकल्स को, अंग्रेजी में शब्द होता है टोटैलिटी, आप उसको सारे टेक्निकल्स को देखते चलें, मूविंग एवरेजेस भी देखें, कैंडल्स भी देखें, सब चीज आप देख के चलें, तब आप निर्णय पे, खाली आप 52 हाई 52 वीक लो लेंगे तो आपका जजमेंट गलत हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आगे से आप खाली 52 वीक हाई नहीं बल्कि आप सारे टेक्निकल्स को लेकर निर्णय लें। जी
श्रोताओं, लिए चलते हैं आपको दिल्ली, दिल्ली से केशव है, केशव जुड़ रहे हैं, केशव जी अपना सवाल पूछिए।
हेलो नमस्कार जी।
नमस्कार।
हेलो
जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछे।
हाँ, पहले तो आपको दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को।
नमस्कार आपको भी केशव जी, बताइए।
हाँ सर, मेरे दो क्वेश्चन है, मैं 2-3 साल पहले आपसे मेरे सवाल किया था कि गोल्ड में क्या निवेश करना चाहिए, आपने कदम आंख बंद करके आप निवेश कर लीजिए
जी,
जब 60-65 था उसके बाद 70 हो गया, उसके हम सोचते अब लेंगे करते करते आज 130 हो गया
जी,
तो सर अब ये सजेशन दीजिए, अभी भी लेने का समय है, और जो पुराना गोल्ड खरीदा हुआ है वो बेचने का भी समय ठीक है, खरीदने का और बेचने का समय ठीक है कि नहीं है। दूसरा सवाल ये है, ये आज की जो दिवाली है ये दुकानदारों के लिए चांदी काटने का समय है, क्योंकि अभी भी जीएसटी के रेट से घटा के ये लोग बेच नहीं रहे हैं, और ग्राहक को तो आज की तारीख में लेना ही लेना है, नया सामान लेना है तो लेना है, तो इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है और क्या करना चाहिए।
चलिए पहली बात तो केशव जी आपको मुबारक हो, आपका 60-65 पे लिया हुआ गोल्ड आज डबल हो गया। मुझे याद है प्राची और निशित के, मैं जहाँ बैठता था सर 50-55 हुआ करता था, तो मेरे से किसी ने यही सवाल पूछा, मैंने कहा आप इसको लेके रखिए और सोने के साथ सो जाइए, और मुझे लगता है केशव जी वाकई सोने के साथ सो गए, बहुत लंबा समय नहीं सोए, बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो आपका प्रॉफिट। तो आपने सवाल पूछा तो मैं ये सलाह देता हूँ, एक निवेश की दुनिया में एक और कहावत होती है और प्राची और निशित को भी शायद अच्छी लगेगी, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, तो जो प्रॉफिट के आपके पास आ गया वो बेहतर है। तो मैं आपको सलाह दूंगा केशव जी, मुझे नहीं पता आपने कितना लिया है, मैं पूछूंगा भी नहीं, कुछ उसमें से आप बेच के और प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जाइए कहीं पार्टी वार्टी कीजिए, और एक आध लड्डू अगर रेडियो के माध्यम से हमारे तक भी आ जाए तो एक लड्डू रेडियो के माध्यम से भेजने की कोशिश करिए, हालांकि आता नहीं है मुझे मालूम है, मुझे क्योंकि लड्डू पसंद है इसलिए मैं लड्डू का नाम ले लेता हूं, तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी के गोल्ड को रखिए, थोड़ा थोड़ा बुक करके चल लीजिए, उसे खुशी मिलती रहती है, नहीं तो खाली सोच सोच के खुशी होती है, बैंक में भी आनी चाहिए। आपने देखिए जीएसटी रेट कट के बारे में पीछे आकाशवाणी ने भी बहुत मुहिम चलाई, यहाँ से वित्त मंत्रालय से अधिकारियों को बुलाया गया, उनसे बात की गई, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक नंबर दिया हुआ है 1915 उसका नंबर है, वहां कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति दुकानदार वेंडर कोई जानबूझ के उसकी कीमत को ज्यादा लगा रहा है, आज भी वित्त मंत्री महोदया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने ये बात बोली, तो गवर्नमेंट भी 54 प्रोडक्ट्स को मॉनिटर कर रही है, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, और मुझे लगता है फिर भी कोई शरारत कर रहा है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। तो नेशनल आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, 1915 पे करें, कौन सा प्रोडक्ट है आप अगली बार जब प्रश्न करें आप उस प्रोडक्ट का नाम ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैं लेने गया, बहुत स्पेसिफिक बात करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया मैं भी दे सकता हूं कि इसकी कितनी कीमत घटी है। पर चिंता करने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा दिन तक ये खेल अगर कोई कर रहा है तो चलेगा नहीं, क्योंकि और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप उसको दूसरे दुकानों पर भी जाके उसी चीज़ को आप पता करें, उससे क्या होगा कि आप प्राइस को कंपेयर कर पाएंगे।
Our next caller is B.R. Nath from Delhi. Mr. Nath, welcome.
नमस्कार साहब।
नमस्कार।
सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सर, I got an HUF with four partners. My son, my daughter and my wife. All are income tax paying. I am selling some land and at a place and I'm getting 50 lakhs. So the total money if I transfer directly or from my account to their account, from HUF account to individual's account, so what will be the tax liability? Number two, I purchased shares from 2000 onwards. So up to 2016, I don't have contact notes or used to come in physical form. It's mainly available nahi hai. So ab main kaise unko dikhaunga purchase price? Thank you, sir.
Okay, so Mr. Nath, your question was on the HUF. First of all, HUF are called co-passers or members. They're not called partners. So I think we need to correct you there. But anyway, more important is about the land you have sold. So when the money comes into HUF, once you've sold the land in HUF, that HUF has a right to distribute that amount with the permission of the Karta, who's head of the HUF. You can distribute that amount amongst the co-partners. There is no problem. That is covered under gift, under a section called 56210 of the Income Tax Act. So that is exempt. But then the income generated out of that money by the co-partners or the members will be clubbed in the hands. So the clubbing provisions under section 64, they apply. So they will individually, the gift is not taxable. So tax will only be paid by the HUF. The transfer of money from HUF to the members will not be taxable. That's your first question. Your second question was about cost of acquisition of the shares, which were held in the paper form long ago. So I think if you go to a portal, if you search on a search engine, you will find that historic prices of shares are available. So I would suggest you in the year in which you bought the shares, I hope you remember that year, you can Google out and you will see that you will be able to find the purchase price of that. Because if you are not able to find the purchase price, then for the purposes of income tax, the income tax has got a right to take the purchase price as zero, which means your capital gains will be very high. I hope you're aware that you can take benefit under section 112A if you've got long-term capital gains from these shares. So go to Google, you'll be able to find out the price. That also the stock exchange data history also contains the historic price of the shares. So I think, I hope I've clarified you. If you still have a doubt, you can call next time.
प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में जारी दूसरी तिमाही के परिणामों के बीच ग्राहकों और निवेशकों के उत्साह से लगातार तीसरे सप्ताह वृद्धि हुई। इस वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं बैंकिंग, एफएमसीजी और फार्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 1,451 अंक बढ़कर 83,952 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 425 अंक बढ़कर 25,710 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक सप्ताह के दौरान सपाट रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.6% से अधिक गिरा। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सप्ताह के दौरान 72 पैसे मजबूत होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 87.97 रुपए पर बंद हुआ। एनपी सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। निशित सिंह जी, अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग टू द ऑल पैनल, हैप्पी दिवाली।
हैप्पी दिवाली।
मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई चीज बढ़ने में आती है, जैसे स्टॉक्स आते हैं, स्टॉक बढ़ते रहते हैं, पेट्रोलियम बढ़ा तो पेट्रोलियम बढ़ता रहता है, रियल एस्टेट में अब जैसे गोल्ड बढ़ रहा है, तो ऐसे कौन से जो ये लोग होते हैं जो इस तरह की रैली करते रहते हैं, और हम उनसे कैसे क्लू ले सकते हैं कि हम भी उसमें इन्वेस्ट करें? और दूसरी बात, इसका जैसे गोल्ड बढ़ रहा है तो देखा जाता है कोई नई चीज गिरती है, तो इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे तो नहीं आएगा? मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसका फिक्र लगा हुआ।
बड़ा मजेदार सवाल पूछा है सिंह साहब ने। जो चीज बढ़ती है बढ़ती जाती है, फिर एक चीज फिर कोई दूसरी चीज बढ़ने लगती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन निकाली है। ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि हम लोग के यहाँ एक हर्ड मेंटालिटी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जो एक काम कर रहा हो सब लोग उसको करने लग जाते हैं, सब लोग उसके पीछे। पर इस बार सिंह साहब, इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि ये हमारे और आपके खरीदने से ये गोल्ड नहीं बढ़ रहा है। पहली बात तो आप जितना मर्जी खरीद लें, मैं खरीद लूं, मेरे साथ प्राची बैठी है, निशित बैठे हैं, हम लोग मिलकर जितना खरीद लें, हमारे खरीदने से नहीं बढ़ने वाला। ये हमारे जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं वो बेतहाशा गोल्ड खरीद रहे हैं और वो अपने करेंसी रिजर्व को दुरुस्त कर रहे हैं। यूएस ट्रेजरी में से पैसा निकल के उसमें जा रहा है। तो इसलिए क्लू कहाँ से मिलता है? मैं तो कहूँगा मार्केट मंत्रा सुनते रहिए। मार्केट मंत्रा आपको, जब यहाँ हम डिस्कशन करते हैं तो हम भविष्य की बात भी करते हैं, हम भूतकाल की बात भी करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस करते हैं जहाँ आपको, जो यहाँ एक्सपर्ट्स आते हैं मुझे मिला के, वो आपको, मैं स्वयं अपनी बात करूँ, हालांकि अपने मुँह से तो नहीं कहना चाहिए, बहुत साल पहले मैंने 50-55 पर गोल्ड लेके रिकमेंडेशन करी थी, आज देखिए 1,30,000 पे है। तो मैं तो समझता हूँ मार्केट मंत्रा जैसे कार्यक्रम सुनते रहिए, इसके अलावा तो मैं आपको और क्या कहूँ। बाकी आप थोड़ा सा जो न्यूज फ्लो होती है उससे सतर्क रहें, अलर्ट रहें, अपने आप को जागरूक रखें और आपको आपको खबर मिलती रहेगी तो आप दुनिया के साथ साथ आप भी कमाई करिए। पर रियल एस्टेट पे सिंह साहब इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रियल एस्टेट में जो पैसा लगता है वो जरूरतों के हिसाब से लगता है। गोल्ड में पैसा आ रहा है, ये सही बात है, ETFs में भी आ रहा है, गोल्ड में आ रहा है, पर रियल एस्टेट पे इस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत ज्योग्राफिकल होती है, किसी किसी पॉकेट्स में रियल एस्टेट बढ़ता है, किसी किसी पॉकेट्स में इतना नहीं बढ़ता है, तो वो उतना को बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन इस पे सिंह साहब नहीं है।
नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर वेलकम।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
और दिवाली की शुभकामनाएं। मेरे दो छोटे सवाल है। एक सवाल है कि जो अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो मेरे पास एक इंडिविजुअल के पास कुछ गोल्ड है तो कैसे वो बेच सकता है और उसको कैसा कितना पैसा मिल सकता है, ये एक मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि GST का जो महोत्सव चालू है दिवाली में, दशहरा में हो गया, तो उसमें ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल डीजल, उसकी भी पहले चर्चा होती थी, वो GST के दायरे में आएंगे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो अभी तक क्यों नहीं आए दायरे में?
रताकर जी, आपका पहला सवाल तो थोड़ा सा मुझे हैरान भी कर रहा है। बहुत आसान है बेचना गोल्ड को तो, और गोल्ड तो आप जाके किसी भी ज्वेलर के यहाँ जाए वहाँ बेच सकते हैं। और GST पेट्रोल डीजल को लाने की मुहिम चल रही है, कुछ राज्य सरकारों को रिजर्वेशन है रेवेन्यू से रिलेटेड, उम्मीद करते हैं आने वाली GST काउंसिल में इसको रिजॉल्व।
एंड मूविंग ऑन टू द US मार्केट्स नाउ, द वॉल स्ट्रीट क्लोज्ड इन द पॉजिटिव टेरिटरी यस्टरडे। द US सॉफ्टन्ड इट्स टोन ऑन ट्रेड टॉक्स विद चाइना एंड ट्राई टू मूव पास्ट क्रेडिट कंसर्न्स। Among the major indices, the S&P 500 climbed more than 0.5% to end at 6,664, and the Dow Jones Industrial Average increased over 0.5% to end at 46,190, and the tech-heavy Nasdaq Composite Index settled over 0.5% up to close at 22,680. For the week, the Nasdaq surged over 2.1%, and the S&P 500 gained 1.7%, and the Dow Jones added more than 1.5%. And moving on to oil now. Oil prices rose marginally on Friday but logged weekly loss. Brent crude futures surged almost 0.4% to settle at $61.29 per barrel, while the WTI crude futures gained over 0.1% to close at $57.54 per barrel. For the week, Brent crude futures dipped 2.3%, and the WTI crude futures also dropped 2.3%. On the geographical front, US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin agreed to meet again to discuss on the Ukraine war, which will be held in the next 2 weeks in Hungary.
शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, माय प्लेजर।
एंड बिफोर वी क्लोज, रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। The GST 2.0 reforms have given major boost to the country's economy, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Adds sales jumps across electronics, automobiles and consumer goods sectors, and the benchmark domestic equity indices gain for the third consecutive week, rise over 1.5% this week, and global crude oil prices register weekly loss of over 2%. From the entire team here, it's goodbye until we meet again. Market.